फिर फरमाया, अलम तरा इला रब्बी का कैफ मद्द ज़िल वलौ शाअ लजअलहू साकिना थुम्मा जअलना अश-शम्स अलैहि दलीला। अब देखिए के आयत नंबर 45 से लेकर 50 तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौहीद के पांच दलाइल बयान किए हैं, और हर दलील जो है उसको इस तरह से बयान किया है कि वो इसका तकाजा करती है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत जो है वो की जाए, सिर्फ अल्लाह की इबादत जो है वो की जाए। तो पहली दलील अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या दी, अलम तरा इला रब्बी का, क्या तूने नहीं देखा अपने रब की तरफ। गोया के अल्लाह ताला इंसानों को गौर व फिक्र की दावत दे रहे हैं कि कायनात का निजाम जो है वो सिर्फ एक रब कर रहा है। तो पहली दलील जो है वो क्या है, कैफा मद्दिल, के कैसे फैला देता है साया। तो अब यह देखें कि रब कौन है, अल्लाह ताला। कैफा किस तरह, मद्दा, मद्दा या मुद्दू का मतलब होता है लंबा करना, खींचना। आप कुरान तजवीद से पढ़ती हैं तो, और आप कुरान को पढ़ती हैं, आप देखें मद लिखी हुई होती है, उसका मतलब क्या होता है, लंबा करें उस लफ्ज को। तो मद का लंबा मतलब है लंबा करना, खींचना। मद्दा लंबा करता है, खींच देता है, फैला देता है अज़ल साए को, कि किस तरह जो है वो फैला देता है अल्लाह साए को। तो पहली दलील जो है ये साया है कि ग़ुरूबे आफ्ताब से तुलुए आफ्ताब तक ये जो है वो पाया जाता है। और अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि पूरी अपनी कुदरत से पूरी कायनात में अल्लाह ताला उसको फैला देता है। कैफ़ा मद्दज़िल, फैला देता है साए को। और आप देखें कि ये साया जो है ये कैसे फैलता है, और यहाँ पे साए से मुराद जो है वो कौन सा साया है जो कि अल्लाह ताला फैला देते हैं। साए से मुराद रात का साया है, ये अल्लाह ताला की शान और कुदरत है, क्योंकि जल जो है ना इसके मतलब होता है रात का साया, और रात के साए को अल्लाह ताला तमाम दुनिया पर इस तरह फैला देता है कि मुस्तकिल तौर पर पूरी दुनिया में किसी की ये ताकत नहीं है कि रात के साए को हटा सके, है ना। और कौन करता है, हर रोज रात के साए को फैलाता है फिर उसको समेटता है, ये कौन करता है, ये अल्लाह ताला करता है ना। अलम तरा इला रब्बी का कैफा मद्दज़्ज़िल, क्या तुम देखते नहीं हो जो है अपने रब की तरफ, अपने रब की निशानियों की तरफ गौर नहीं करते कि किस तरह अल्लाह ताला जो है वो रात के साए को फैला देते हैं। वलौ शाअ लजअलहू साकिना, और अगर वो चाहता तो उसे दायमी साया बना देता। वलौ शाअ, अगर वो चाहता, लजअलहू, तो वो उसको बना देता। तो हु की जमीर जो है वो साए के लिए है, साए की तरफ है। तो अगर वो चाहता तो उस साए को बना देता साकिना, ठहरा हुआ। मतलब ये है कि हमेशा साया ही रहता, हमेशा रात ही रहती। और आप देखेंगे जब रात होती है हर तरफ रात जो है वो अपनी दबीज चादर जो है वो फैला देती है, और दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता रात गहरी होती चली जाती है। फिर होता क्या है कि फिर सूरज जो है जब तुलू होने का वक्त होता है तो सुबह काजिब और सुबह सादिक, तो आहिस्ता आहिस्ता रात का जो साया है वो कम होने लगता है, और दिन की जो रोशनी है उसकी चादर जो है वो हमें हर तरफ फैली हुई जो है वो नजर आती है। तो तुलू आफ्ताब जो है उसके वक्त साया आहिस्ता आहिस्ता सिमटने लगता है। पहले रात साए की तरह पूरी कायनात में फैल जाती है, फिर सूरज जब तुलू होता है तो आहिस्ता आहिस्ता रात की तारीकी जो है वो सिमटने लगती है। مثلاً آپ اس بات پر بھی غور کریں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ سورت قصص میں بھی یہ بات کہتے ہیں آیت 71 سے 73 تک، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت، ان سے کہو کہ بتاؤ اگر اللہ رات کو تمہارے اوپر قیامت تک کے لیے مسلط کر دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی لائے گا، کوئی ہے جو سورج پیدا کر دے پھر؟ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قل ارأیتم، ان سے پوچھو، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت، کہ اگر قیامت تک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دن مسلط کر دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے رات کو لائے گا جس میں تم سکون پا سکو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ فمن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور تاکہ تم اس کے فضل کے طالب بنو، اور تاکہ تم اسی کے لیے شکر گزار بنو۔ آیت نمبر 71 سے 73 سورت قصص، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی احساس دلا رہے ہیں کہ ہر روز رات کے سائے کو پھیلانا، رات کی تاریکی کی چادر کا پھیل جانا، اور صبح کے وقت جب سورج آتا ہے تو دن کی روشنی، سورج کی کرنیں جو ہے وہ ہر طرف جو پھیل جاتی ہیں، تو یہ کون کرتا ہے یہ کام؟ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ الم ترا الى ربک کیف مد الظل، کیا تم دیکھتے نہیں کیسے اللہ سایہ پھیلا دیتا ہے؟ ولو شاء لجعلہ ساکنا، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ہمیشگی دے دیتا، یعنی ہمیشہ رات ہی رہتی، ہے نا۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ رات کی تاریکی سمٹنے لگی اور سورج کی روشنی جو ہے وہ آنے لگی، تو مطلب یہ ہے کہ سائے پر سورج کو دلیل بنایا کہ سائے کا پھیلنا اور سکڑنا سورج کے عروج اور زوال کے تابع ہے، سورج کے طلوع اور غروب کے تابع ہے سائے کا پھیلنا اور بڑھنا، رات کا پھیلنا اور سکڑنا۔ اب سائے سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں دن کی روشنی، یعنی رات کی تاریکی سایہ ہے تو سایہ پھیلتا ہے اور پھر سکڑتا ہے، تو سایہ کے سکڑنے سے مراد کیا ہے؟ دن کی روشنی، دن کا طلوع ہونا۔ تو جس طرح سے رات کی تاریکی اور دن کی روشنی ہے، بالکل اسی طرح سے توحید اور شرک ہے، شرک رات کا اندھیرا ہے اور توحید کیا ہے؟ جیسے کہ سورج جو ہے وہ توحید پر دلالت کرتا ہے کہ یہ روشنی کون دیتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ کائنات میں یہ اللہ کی توحید کی نشانی ہے جو بکھری پڑی ہے، یہ رات اور دن، اور کوئی اور نہیں ہے جو کہ رات اور دن جو ہے وہ اس کو پیدا کر سکے یا اس کو لا سکے۔ تو یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ پوری کائنات جو ہے وہ اللہ کے ماتحت ہے، یہ اللہ کے تابع ہے۔ تو یہ دھوپ اور سایہ، یہ رات اور دن، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں اور ان کا زندگی اور موت سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ دن گویا کی زندگی ہے، رات گویا کی موت ہے۔ اگر ہمیشہ رات ہی رہتی تو پھر کیا تھا کہ کبھی روشنی نہ ہوتی، ہے نا، اور اگر ہمیشہ دن ہی رہتا تو کبھی رات ہی نہ ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اگر ہمیشہ دنیا ہی رہتی تو کبھی آخرت نہ ہوتی، ایسے نہیں ہو سکتا۔ جس طرح رات کے بعد دن ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ دنیا کی زندگی کے بعد جو ہے وہ قیامت ہوگی، آخرت ہوگی اور حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ پہلی دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے توحید کی دلیل دی ہے، اور یہ دلیل ہے آخرت کی، اور اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا ہے لوگوں کو کہ کائنات کے رات اور دن پر غور کرو، یہ اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ انسان तुम्हें भी लौटना है और अल्लाह की तरफ जाना है। जिस तरह रात हमेशा नहीं है ना, उसी तरह इंसान तू दुनिया में हमेशा नहीं है। जिस तरह रात हमेशा नहीं है, इस तरह ये कायनात हमेशा नहीं है। इस कायनात में एक तगैयुर है, एक तब्दीली है, सबात एक तगैयुर को है जमाने में। कोई चीज को हमेशगी नहीं है। अगर वो चाहता तो उसे दायमी साया बना देता, हमने सूरज को इस पर दलील बनाया। अब रात और सूरज का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला कह रहे हैं, सुम्मा कबद ना हूं, फिर हमने उसको मुट्ठी में ले लिया। काफ बा द्वाद, किसी चीज को पांचों उंगलियों से मुट्ठी पर पकड़ लेना, मुट्ठी में ले लेना। जैसे आप कहते हैं, मसलन आप उर्दू में भी कहती हैं कि कबज हो गई है, जैसे वो चीज रुक गई है ना, सुकड़ गई है। आप कहती हैं ये चीज मेरे कब्जे में आ गई, कब्जे में आना, मुट्ठी में ले लेना, उसके लिए ये रस इस्तेमाल किया जाता है। कोई चीज जो है उसको अपनी हिफाजत में ले लेना, अपने जो अपनी तरफ खींच लेना। तो गोया के अब यहां पर ये बात बताई जा रही है, सुम्मा कबज ना हूं, फिर हम जो है इसको अपने कब्जे में ले लेते हैं। इलेना अपनी तरफ, किसको हम कब्जे में लेते हैं? रात को हम इस साए को अपने कब्जे में ले लेते हैं। कब्दई यसीरा, कब्जे में लेना, मुट्ठी में ले लेना, आहिस्ता आहिस्ता। इसका मतलब यह है, समेटने से मुराद क्या है, कब्जे में लेने से मुराद क्या है, कि हम उसको गायब कर देते हैं। फना हो जाती है रात, खत्म हो जाती है रात, और फिर जो है वो सूरज की रोशनी आ जाती है। तो गोया के जिस तरह इस कायनात में रात और दिन का फेर जो है, दिन और रात एक बड़े मुनज्जम तरीके से दुनिया में मौजूद हैं, तो मतलब क्या है कि इसी तरह जिंदगी के बाद जो है वो मौत होगी, हिसाब किताब होगा, और हर शख्स उठेगा, अल्लाह के सामने हाजिर होगा और हिसाब किताब होगा। आप देखिए, रात को हम सोते हैं, सुबह हम उठते हैं। अच्छा, रात को जब सोते हैं पता नहीं चलता ना, वो भी एक मौत है। जैसे आप देखेंगे कोई शख्स बेहोश होता है, जब उसको जो है एनेस्थीजिया दिया हुआ होता है, बेहोश किया हुआ होता है, उसके जिस्म को काटा जा रहा होता है, उसके पेट काटा जा रहा है, जो है वो बाजू काटा जा रहा है, टांग काटी जा रही है, ऑपरेशन किया जा रहा है, उसको कुछ पता नहीं चलता। जब वो होश में आता है तो उसको महसूस होता है कि यहाँ मेरे दर्द है, यहाँ मेरे तकलीफ है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने काट दिया है, लेकिन जब वो काटा जा रहा था उसको पता नहीं चल रहा। तो बिल्कुल इसी तरह नींद जो है ना, ये भी एक तरह की मौत है। इसी तरह कब्र की जिंदगी भी ये एक तरह की मौत है, जिसमें इंसान का शऊर इस तरह से नहीं है जैसे आजकल हम जागते हैं, लेकिन उसको एहसास होता है अजाब का भी और फिर नेमतों का भी। तो रात और दिन जो है ये अल्लाह की इतनी बड़ी दलील है कि ये बताती है कि लोगों, दुनिया के बाद तुम मरोगे, इस जिंदगी के बाद तुम मरोगे और अल्लाह के पास जाओगे। रात के बाद दिन है, तो दुनिया के बाद एक और जिंदगी है जो आखिरत की जिंदगी है। जिस तरह जो रात और दिन का जोड़ा जोड़ा, इसी तरह कुफर और इस्लाम का जोड़ा है, इसी तरह अंजाम का जोड़ा है, जन्नत या जहन्नम। तो ये दलील किस चीज पर है कि अहले मक्का ने तौहीद का इनकार किया और शिर्क करने लगे, और रसूल का इनकार किया, किताब का इनकार किया, आखिरत का इनकार किया। तो अल्लाह ताला कहते हैं रात और दिन जो है ये तौहीद और आखिरत के बहुत बड़े दलाइल हैं। फिर इसके बाद जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या तवज्जो दिलाते हैं, क्या बात बताते हैं कि आप सोचें कि कायनात से जब अल्लाह ताला निशानियां देते हैं ना, तो कायनात से निशानियां देने का मकसद ये है कि लोग जो हैं वो अल्लाह की तरफ रजू करें। दूसरी बड़ी दलील दी, वहुवल्लज़ी जअला लकुमुल लैला लिबासं वन्नौमा सुबातन वजअलन नहारा नुशूरा, और वही तो है जिसने रात को तुम्हारे लिए लिबास बना दिया, वन्नौमा सुबातन, और नींद को जो है वो सुकून मौत, और वन्नौमा और नींद को काटने के लिए बनाया। क्या काटना? काम को काटना, ख्यालात को काटना। जब आप सो जाते हैं ख्यालात खत्म, काम खत्म। वजअलन नहारा नुशूरा, और दिन को जी उठने का वक्त बनाया। तो अब यहां पे कहा जा रहा है, अब ये दूसरी दलील है तौहीद और आखरत पर, कि अल्लाह ताला ने रात और दिन को ना एक बड़ी दलील बनाया है, बड़ी नेमत और मौजज़े के तौर पर। और रात को लिबास नहीं, जैसे पर्दा करता, हम कपड़ा पहन लेते हैं तो छुप जाते हैं, इसी तरह रात की चादर पूरी कायनात पर लिबास की तरह फैल जाती है, हर चीज छुप जाती है, निवास। तो राज जो है वो अल्लाह ताला का जो है एक लिबास है, जिसकी चादर अल्लाह ताला दुनिया में कायनात में बयक वक्त हर तरफ जो है वो बखेर देते हैं। और आप देखें कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये अल्लाह ही ये काम जो है वो कर सकता है, अल्लाह के सिवा और किसी की कुदरत नहीं कि ऐसा कर सके। लिबास इंसान के पूरे बदन का सातिर है, रात की कुदरती चादर पूरी कायनात पर डाल दी जाती है, रात लिबास बन जाती है। वन नौमा सुबातन, और नींद जो है बाइस सुकून। सुबात जो है सीन बात आ के लफ्जी मानी है कता करना, काटना। सुबात वो चीज है जिससे किसी दूसरी चीज को कता किया जाए, काटा जाए। अब आप देखें कि दिन भर इंसान काम करता रहता है, जब वो रात को लेटता है तो क्या होता है कि दिन भर की मेहनत जो है ना, दिन भर की थकन जो है ना, उसको काट दिया जाता है, खत्म, काम खत्म हो जाता है। आप देखें बिस्तर पर जैसे मैं लेटती हूँ, मैं अपना दिन भर का जायजा लेती हूँ कि मैंने आज दिन में क्या किया ना, आज मैंने ये गलती क्यों की, मैंने ये जुमला क्यों बोल दिया, ये अच्छा काम किया ये गलत काम किया, है ना। तो आप अपने दिन का आप जायजा ले रहे होते हैं, ख्यालात की आपकी प्लानिंग की एक यलगार होती है आपके जहन पर, आप सोच रहे थे कल मैं ये करूंगी, पता नहीं चलता कब नींद आई और आप नींद के अंदर चले गए, आप फिर भूल जाते हैं कि मैं क्या सोच रही थी जब मैं जो है वो सोई ना। तो जितने अफकार और ख्यालात हैं कट जाते हैं, दिमाग को आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो सुबात का तर्जमा बाज लोगों ने राहत भी किया है, सुबात का तर्जमा राहत, क्यों, नींद आती है ख्यालात खत्म हो जाते हैं, दिन भर आपको किसी ने कुछ कह दिया, आपने किसी को कह दिया, आपको कोई तकलीफ हो गई, कोई परेशानी हो गई, लेकिन जो ही नींद आई तो दिमाग को आपके दिल को आराम मिल गया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं नींद को सारी कायनात पर मुसल्लत कर देता हूं, तो वो क्या है, वन्नौमा सुबाता, कि वो नींद उनके लिए आराम और राहत का सामान बन जाती है। और ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी जो है वो नेमत है कि नींद इंसानी जिस्म के लिए रात का जरिया। आप देखिए कितने अमीर लोग हैं, कुछ लोग बड़े अमीर हैं, बड़े दौलतमंद हैं, उन्होंने ये समझा था कि दौलत इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज है जिसके लिए उन्होंने सारी जिंदगी लगाई, लेकिन ये कि अब वो इस बात से रोते हैं कि नींद नहीं आती, सारा कुछ मेरे पास है लेकिन मैं सो नहीं सकता, मैं सो नहीं सकती, नींद दवाइयों से भी नहीं आती, क्योंकि वक्त के साथ साथ मकदार बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, और एक वक्त आता है कि नींद नहीं आती। जैसे यहाँ पे अब ये भी रिवाज हो गया कि दिन के वक्त लोग सोते हैं, ये भी अल्लाह की नेमतों की बहुत नकदरी है। जैसे बच्चों में बाद लोगों को बड़ा शौक रहता है कि दिन के वक्त वो जो है वो सो रहे होते हैं और रात के वक्त वो जाग रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने ना हर चीज के अंदर एक खासियत रखी है, उसके कुछ खवास हैं, उसकी कुछ खूबियां हैं। और रिसर्च से ये बात सामने आती है कि रात की थोड़ी नींद ज्यादा इफेक्टिव होती है, ज्यादा बेहतरीन होती है, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं मैंने नींद को नाजिल कर दिया, वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा, सूरत जो है वो नबा में भी आपने ये बात पढ़ी। तो एक बच्चा जो है वो एक दिन रात को जागा तो सुबह वो सो रहा था, तो माँ ने उसे पूछा कि कहने लगा कि मैं बहुत थका हूँ, मुझे नींद आ रही है। माँ ने कहा कि तुम अब कब से तो सो रहे हो, कहने लगा कि नहीं नींद नहीं आई, जैसी रात की नींद है ना वैसी नींद नहीं थी जो कि अभी मैंने ली है और मैंने कोशिश की है, मैंने सोने की कोशिश की है। रात को आप जागने की कोशिश करते हैं ना और दिन को आप सोने की कोशिश करते हैं, तो वक्त पूरा नहीं होता, सही तरह से नहीं होता ना। तो एक दफा एक अमीर शख्स जो था वो जो बहुत परेशान था, उसको नींद नहीं आ रही थी, तो वो कह रहा था कि मैं ये समझता था कि हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है, हर मसले का हल पैसे में है, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने हर चीज को अपनी एक हैसियत और अहमियत और असलियत में पैदा किया है, और हर मसले का हल जो है ना वो पैसे में नहीं है। तो बाज़ औक़ात इंसान जो है वो इस बात को जो है वो सोचता है, इससे अफसुरदा होता है। तो हमें भी अपनी प्लानिंग क्या करनी चाहिए कि रात के वक्त हम आराम करें, सुबह के वक्त उठें और काम करें। तो अर्ली नाइट और अर्ली मॉर्निंग ये मुसलमानों का शेवा है, और रातों को जागना, और अब हमारे शादी ब्याह की तकरीबात हैं, आना जाना है, बहुत रात तक लोग जागते रहते हैं, उससे नतीजा क्या निकलता है, फराइज मुतासर होते हैं, है ना। कभी तो रात जागना इबादत बन जाता है, जैसे क़यामुल लैल करना और लैलतुल कदर की तलाश करना, रात को अल्लाह को याद करना, तहज्जुद पढ़ना, आंसू बहाना, मुहासबा करना अपना, कुरान का मताला करना, लेकिन फिर साथ ही हमारे जिस्म का भी हम पर हक है ना कि हम आराम भी करें, और हमें अपनी जिंदगी को मुंतबित जरूर करना चाहिए, और बच्चों के अंदर भी। बाज वालदेन बड़े खुशकिस्मत हैं जो बच्चों को सुबह उठने की आदत डालते हैं, और सुबह उनके बच्चे उठते हैं माशाल्लाह, उनकी फजर की नमाजें कजा ही नहीं होती। एक लड़की की शादी हुई, ससुराल में आई तो बड़ी परेशान हुई कि देर तक सारे ससुराल वाले जागते रहते हैं, और सुबह ऐसे 11 बजे से 12 बजे से पहले उनकी सुबह नहीं होती। तो ये बड़ी नहुसत है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ भी है कि आपने कहा कि मेरी उम्मत के बकूर में बरकत दे दे, सुबह उठने में बरकत दे दे। तो सुबह उठना रिज्क में बरकत की अलामत है। रिज्क में अल्लाह बरकत देता है, इल्म में बरकत देता है, अक्ल में बरकत देता है, हर चीज में। सुबह का वक्त हिफ्ज करना है, सबक याद करना है, कोई भी आप काम करना चाहती हैं घर का भी, अलग सुबह आप इब्तदा करें तो बड़ी उसमें बरकत है। तो बहरहाल यहाँ पे रात और दिन दो तजाद चीजों का हवाला दे के, कुफर ऐसे है जैसे कि रात और इस्लाम ऐसे है जैसे कि दिन, और दुनिया की जिंदगी के बाद आखिरत की जिंदगी है जिसमें हिसाब किताब होगा। वही अल्लाह तो है जिसने रात को तुम्हारे लिए लिबास बनाया और नींद को सुकूने मौत, सुबातन राहत का सामान बनाया, वजअलन्नहारा नुशूरा, और दिन को जी उठने का वक्त बनाया। तो इसका मतलब क्या है कि दिन जो है वो रोशनी है। अच्छा, ये जो आयत है ना हमारे सामने तीन बातें अमल के लिए लेकर आती है। एक तो ये कि ये तौहीद पर दलालत, ये अल्लाह कर सकता है, रात और दिन को आगे पीछे कोई नहीं कर सकता, सही है ना, ये अल्लाह कर सकता है। दूसरी बात जो हमारे सामने आती है वो ये कि ये आयत भी जिंदगी बाद मौत की दलील है ना, रात के बाद दिन का आना, इसी तरह ये है कि जिंदगी के बाद मौत आएगी, क्योंकि दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, एक चक्कर है जो चल रहा है। तीसरी बात ये है कि ये आयत उस जमाने में ऐलान कर रही थी जब कुरान नाजिल, और आज भी ये ऐलान कर रही है कि जाहलियत की रात खत्म हो चुकी, शिर्क की रात, गुनाहों की के अंबार और रातें खत्म हो चुकी, अब इल्म, हदायत, मार्फत का दिन जो है वो रोशन हो गया है। अब जरूरी है कि नींद के माते बेदार हों, और रात की नींद जो उनके लिए मौत की नींद थी वो उससे उठें, और उसके बाद जो है वो क्या करें, अपनी आखिरत की तैयारी करें। वजअलन्नहारा माशा, जैसे वजअलन्नहारा माशा है, और यहाँ पे है वजअलन्नहारा नुशूरा, तो उठने का वक्त क्या है, यानी जागो और काम करो। तो इसका मतलब है कि नींद के मातों को उठना चाहिए, गफलत से, जहालत से, और सुबह के वक्त उठना और नमाज से अपने दिन की इब्तदा करना, ये एक मुसलमान का शेवा है ना। और कहते हैं कि जब इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठा ही था तो एक हिंदू औरत अपने बेटे को सुबह सुबह जगा रही थी, और जगाते हुए कह रही थी, ए मोहन लाल तेरा सत्यानाश, हिंदू था ना बेटा, ओ मोहन लाल तेरा सत्यानाश, तू क्या मुसलमानों की तरह दिनचर्या तक सोता रहता है। आप सोचें कि उस हिंदू औरत को जो है वो कौन बताए कि मुसलमानों के यहाँ तो एक नमाज रात के अंधेरे में फर्ज है, फर्ज नफल नहीं, और अगर मुसलमान उस वक्त ना उठे तो उनका फर्ज मुतासिर हो जाता है। तो अब उसने अपने एक दिन मुसलमानों को जो है वो सोते हुए ही देखा था, जाते हुए देखा ही नहीं, तो कहती ओ मोहन लाल तेरा सत्यानाश, तू क्या मुसलमानों की तरह दिन चढ़े तक सोता रहता है। तो हमारा इस्लाम और कुरान जो है वो इल्मी बातें नहीं है, अमल की बातें हैं, और अमल करके दिखाने की बातें हैं। फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो दलील जो दे रहे हैं, तो ये हमें कौन सी दलील मिली, रात और दिन की दलील। फिर इसके बाद तीसरी दलील है, और ये तीसरी दलील जो है ये हवाएं हैं। वह वल्लजी, और वही तो है जिसने अरसल रियाहा, भेजा हवाओं को, बुशरम खुशखबरी देने वाली, बैना यदे दोनों हाथों के आगे, यानी आगे आगे, रहमत ही अपनी रहमत के। तो ये तीसरी दलील है कि वो अल्लाह ही तो है जिसने हवाओं को जो है वो खुशखबरी देने वाली बनाकर भेजा। अब यहां पे देखें, रियाह का लफ्ज है, री की जमा है, और इसके मानी होता है हवा। हवा चल रही हो या रुकी भी हो, अगर वो हरकत में हो, चल रही हो, तो उसके मानी क्या है, जैसे वो हवा जो हर वक्त चलती रहती है, ऐसा भी होता है, कभी ऐसा भी होता है कि हवा रुकी हुई होती है, कभी ऐसा भी होता है कि हवा खुद ही नहीं चल रही, बादलों को भी लेके उड़ रही है ना। तो मुख्तलिफ जो है वो हवाएं हैं और अरबी में उसके मुख्तलिफ नाम हैं। जो हवा शमाल से जनूब की तरफ चलती है उस हवा को भी शमाल कहते हैं, ये हवा अमूमन बारिश लाती है, और जो जनूब से शमाल की तरफ चले उसे जनूब कहते हैं, ये अमूमन बादलों को उड़ा कर ले जाती है, और जो मशरिक से मगरिब को अमूमन सुबह के वक्त चलती है उसको जो है वो सबा कहते हैं, है ना, सुबह के वक्त अमूमन चलती है, दिल को बड़ी ये ठंडक फराहम करती है। और जो मगरिब से मशरिक को चले अरबी लोग उसको दबूर कहते हैं, इसे मनहूस ख्याल किया जाता है, क्योंकि आद कौम जो थी उसके वक्त जो है उस पर हवा जो थी जो आई थी इसी हवा ने उसको हिला किया था, वो मगरिब से मशरिक को चली थी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि रियाह जो है ना ये री की जमा है। कुरान ने री और रियाह को अलग अलग मानों में इस्तेमाल किया है। री जो है ये री क्या है, वाहिद है और अमूमन अजाब देने वाली हवा के लिए इस्तेमाल होता है। री का लफ्ज कुरान में बहुत ज्यादा जगह पर ये इस्तेमाल हुआ है री। और अगर आए अरसाल रिया, अमूमन रहमत की हवाओं के लिए आता है, कभी इससे ये हटकर भी आता है, लेकिन ज्यादातर रिया आता है तो किस लिए, रहमत के लिए, री आता है तो अजाब के लिए ये आता है। अमूमन अल्लाह ताला ने रहमत की हवाओं के लिए जमा का सीगा इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो ये हवाएं आती हैं तो क्या होता है, वहु अल्लज़ी अरसल रियाहा, वो अल्लाह ही तो है जिसने हवाओं को जो है वो भेजा, बुशरम बशारत देने वाली, बेना यदई आगे आगे। और आप देखें कि हवाएं कैसे बशारत देती हैं, कि बाज़ औक़ात जब जमीन बंजर होती है, बीमारियां होती हैं, किसान पानी के लिए बारिश के लिए दुआएं कर रहे होते हैं, परेशान हाल होते हैं, तो उसमें जो है वो होता क्या है कि यकदम हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं, बड़ी पुरसकून, तो ऐसे लगता है कि अब बारिश होने वाली है, तो सब लोग एक उम्मीद से हो जाते हैं। तो बुशरम बेना यदई आगे आगे, तो असल में यदैन था, नून गिर चुका है, और उसके बाद जो है वो चौथी दलील जो अल्लाह ताला ने दी, फिर वो बारिश का पानी है, वानजलना मिनस समाई माअन तहूरा, और वो अल्लाह ही तो है, फिर वो जो है वो नाजिल करता है आसमान से पाक पानी, माअन तहूरा, पाक पानी नाजिल करता है। तो इससे क्या बात पता चलती है, एक पानी तो वो होता है जो हर जोहड़ में गंदगी में होता है, गंदा होता है, नीचे पानी होता है, लेकिन जो ऊपर से पानी आता है ये जरासीम से पाक होता है, जहरीले मादों से पाक होता है, हर तरह की गंदगी से पाक होता है। जब ये पानी नाजिल होता है आप देखें दरख्त भी नहाए हुए नजर आते हैं, सबज सबज पत्ते, मकान नहाए हुए नजर आते हैं, जानवर पूरे के पूरे, पूरी इमारतें, पूरे दरख्त, जंगल, सहरा, हर चीज जो है वो पानी में धुल जाती है ना। तो बारिश की शक्ल में जब अल्लाह ताला पानी नाजिल करते हैं तो पानी जो है मीठा होता है, पाक होता है, इंसान हैवान सारे लोग उससे तहारत और पाकीजगी हासिल करते हैं, और ये पानी जो है उससे फिर क्या होता है कि इंसान सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी नहीं करता, जमीन की जरूरत, जानवरों की जरूरत, पूरी कायनात की जरूरतें उससे पूरी होती हैं। वंजलना मिनस समाई माअन तहूरा, कि वो अल्लाह ही तो है जिसने जो है वो पानी को नाजिल किया है ना। तो और पानी भी कैसा कि पाक पानी। और आप देखें पानी बारिश जब होती है किसी इलाके में बड़ी बीमारी होती है, मौसम बदलता है, बीमारी आम हो जाती है, नजला, खांसी, बुखार, कोई भी बारिश होती है एकदम, फिर उसके बाद जो है वो मुतद्दी बीमारी जो होती है उसको एक रोक आ जाती है। इसी तरह सूरत अनफाल की आयत 11 में आपने पढ़ा, फयुनज़िलु अलैकुम मिनस समाई मा लियुतहिरकुम बिह, अल्लाह ताला ने पानी को पाक कहा, इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक पानी पाक है, उसे कोई चीज नापाक नहीं करती, है ना। अबू दाऊद, निसाई, तिर्मिजी और इब्ने माजा की ये रवायत है। और आप देखें कि हम लोग भी जो पाक होते हैं तो किससे पाक होते हैं, पानी से पाक होते हैं ना। पानी गोया के पानी अल्लाह की बहुत बड़ी जो है वो नेमत है। और ये लोग जो थे ना अहले मक्का, वो बारिश को ना सितारों की गर्दिश से जो थे वो मंसूब करते थे। वो ये कहते थे कि अगर समंदर का पानी अपनी असली हालत में खेती को पिलाया जाए तो खेती जो है वो नुकसान दे सकती है। या फिर आप देखें कि बाज का तो कहते थे कि फलां हमारा अगर बुत नाराज हो जाएगा ना तो पानी बारिश नहीं होगी, उस इलाके की बारिश पर जो है वो बंदिश कर दी गई है, बुत फलां जो है वो नाराज हो गया। तो वो जो है वो बारिश का भी उनके पास जो था ना वो खुदा था। तो अल्लाह ताला यहाँ पे ये बात बता रहे हैं कि पानी जो है वो मेरा नाजिल करता है, और ये अल्लाह की तौहीद की दलील है, ये अल्लाह की रबूबियत की दलील है कि अल्लाह रब है जो इंसान की सारी जरूरियात को जो है वो पूरा करता है। फिर इसके बाद पांचवी दलील ये दी, ले नुहिया बिही बल्दतम मैतन वनुस्कियाहू मिम्मा खलकना अनआम वा नासिया कसीरा, ताके ले नुहिया बिही, ताके हम इसके जरिए जिंदा करें। किसको जिंदा करें? बल्दम मैतन, मुर्दा जमीन को। यानी पानी अल्लाह ताला किस लिए नाजिल करते हैं? ताके उसके जरिए जो है वो मुर्दा जमीन जो है उसको जिंदा किया जाए, है ना। और मुर्दा जमीन से मुराद क्या है? जमीन का जो है वो सरसब्ज होना। पानी जब जमीन पर आता है तो मुर्दा जमीन को एक जिंदगी मिलती है, उसको उसको हयाते ताजा मिलती है, और वो जमीन जो है हर तरफ बारिश के पानी की वजह से उसमें हरियाली ही हरियाली जो है वो नजर आने लगती है। तो ये क्या है? ये अल्लाह ताला की रहमत की बहुत बड़ी दलील है कि अल्लाह ताला ने अजीमुशान पानी की नेमत को बारिश की शक्ल में नाजिल किया कि उसके जरिए से मुर्दा जमीन जो थी उसको जिंदगी मिल गई। वनुस किया हूं, और ताकि हम इसके जरिए पिलाएं, मिम्मा खलकना, जो कुछ हमने पैदा किया, यानी अपनी मखलूक में जो हमने पैदा किया है इसमें से अनामन जानवरों को भी, जितने भी मवेशी हैं वो पानी लेते हैं बारिश से, वानासी या कसीरा, और बहुत से इंसानों को ये बारिश जो है वो सैराब करती है। आप देखें जब बारिश होती है बाज इलाके खुश्क होते हैं, बाज इलाके जो है वहां पे बारिश होती है। एक जगह पे ओले पड़े होते हैं, दूसरी जगह पे नहीं पड़े होते। अभी भी आप देखें, अभी हमारे यहाँ स्नो सीजन शुरू नहीं हुआ, स्नो सीजन बारिश का बर्फ का सीजन शुरू नहीं हुआ, लेकिन बाज जगहों पे स्नो पड़ भी गई है। हम थोड़े दिन पहले जा रहे थे तो एक गाड़ी पूरी स्नो से भरी हुई थी, है ना। तो कुछ जगह पे होती है, कुछ पे बारिश नहीं होती, कुछ पे स्नो पड़ती है, कुछ पे नहीं। तो ये इख्तियार किसके पास है? अल्लाह के पास है। अल्लाह चाहे तो नाजिल करे, चाहे तो ना करे, थोड़ा करे, ज्यादा करे, जितना भी करे। तो ये बात भी ये अल्लाह की तौहीद की दलील है, और ये अल्लाह ताला ने इस बात में ये बात खास तौर पे हम सबके सामने रखी है कि ये अल्लाह है जो कि जानवरों को भी सैराब करता है और इंसानों को भी सैराब करता है। और एक दफा जो है वो एक बादशाह था, और बहुत ही ज्यादा जो था वो परेशान था। तो उस पे जो है वो उसके पास एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी आया हुआ था, और बुजुर्ग जो है उसने उनसे क्या बात कही, बुजुर्ग से ये बात कही कि बुजुर्ग ने बादशाह से कहा कि हजरत, यानी अल्लाह ताला ने जैसे वो बादशाह, चूंकि बादशाह के पास कितनी दौलत, इक्तदार, हुकूमत क्यों ना हो तो वो खुश नहीं रहता ना। तो अब बुजुर्ग उसको बताना चाहता था कि अल्लाह है हाकिम। तो कहने लगा कि मतलब आप जुल्म ना करें, आप लोगों पे ज्यादतियां ना करें। और उसके बाद पानी का उसने गिलास मंगवाया, और गिलास मंगवाकर बादशाह से कहा कि हजरत आप पी लीजिए ये पानी ना। उसके बाद जब उसने पानी जो है वो पी लिया तो कहने लगे कि हजरत क्या ये पानी जो है, जो आपने ये पानी पिया है, क्या आप ये पानी जो है, अगर आपको ये पानी ना मिले तो आप क्या करेंगे? उन बादशाह ने कहा मैं अपनी आधी कायनात ना बेच दूं, अपनी सल्तनत आधी बेच दूंगा ये मैं पानी लेने के लिए, यानी पूरी आधी सल्तनत ही बेचनी पड़ जाए तो ये मैं पानी हासिल करना चाहूंगा। फिर थोड़ी देर गुजरी तो फिर उस बुजुर्ग ने पूछा कि हजरत अब ये पानी जो आपके पेट में है, जो आपने पी लिया है, अगर ये आपके पेट से निकले ना पेशाब के जरिए ना निकले, फिर आप क्या करेंगे? उसने कहा कि बाकी आधी सल्तनत भी भेज दूंगा। तो बुजुर्ग ने कहा कि बादशाह सलामत, आपकी पूरी सल्तनत की क्या हकीकत है कि एक पानी गिलास के लिए पहले आप पीने के लिए, फिर उसको निकालने के लिए आप पूरी सल्तनत जो है उसको उससे फारिग हो जाएं, तो आप सोचें कि पूरी कायनात जो अल्लाह की नियमतों से भरी पड़ी है उसकी क्या हैसियत है, कितनी बड़ी नियमतें हैं जो अल्लाह ताला ने उनसे हम सबको जो है वो नवाजा है। तो पानी है ना, पानी भी अल्लाह की बहुत बड़ी नियमत है। आप देखें बाज इलाकों में पानी नहीं होता, स्वीट वाटर नहीं होता, कितने वो लोग परेशान होते हैं। फिर बाज घरों में जो है वो बाहर से खरीद कर पानी जो है वो पिया जाता है कि वहां का पानी ठीक नहीं है, मिलहुन है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला अपनी पानी की नेमत जो कि पूरी कायनात में अल्लाह ताला पहुंचाते हैं उसका खास तौर पे जिक्र कर रहे हैं कि इंसानों के लिए भी है और जानवरों के लिए भी है, और ये वाकई अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मेरे और आपके बस में नहीं था कि हम ये कर सकें। तो ये सारी नेमतें गिनवाने के बाद फिर अल्लाह ताला बताना क्या चाहते हैं, कहते हैं वाला कसरफ नाहू बेनहुम लियज़्ज़करू, और हम इसको फेर फेर कर बयान करते हैं। सर्रफ ना हु, इसको फेर फेर कर बयान करते हैं। तो हु की जमीर जो है वो किस तरफ है? मुफस्सरीन ने हु की जमीर से क्या दलायल जो है वो मुराद ली है। बाज लोग तो ये कहते हैं कि हु की जमीर से मुराद है कुरान मजीद, यानी कुरान करीम को फेर फेर कर बयान किया है। आप देखिए एक ही मजमून है, आप भी ये कहती हैं कि एक ही बात है और बार बार आ रही है, अंदाज मुख्तलिफ है, कहीं मुख्तसर है कहीं तफसील से है, कहीं अल्फाज कुछ हैं कहीं अल्फाज कुछ हैं, बात एक ही है। तो बात कहते हैं कि इससे मुराद कुरान मजीद है, कि कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने जो है वो तरह तरह से जो है वो बयान किया है। सर्रफ ना हु, इसको तरह तरह से बयान किया है, जो भी यानी अल्लाह ताला ने फेर फेर कर बयान किया। कौमों के वाकयात हैं, कायनात के दलाइल हैं, और तरह तरह से बांटा है। बाज़ लोग कहते हैं कि सर्रफ ना जो है हमने इसको किया, हम की जमीर तो अल्लाह की तरफ है, हु की जमीर से मुराद वो तमाम निशानियां जिनका भी ऊपर जिक्र हुआ है, साया, बादल, बारिश, ये चीजें जो हैं ये से मुराद हैं। मद्दज़िल और शम्स, फिर है लैल, फिर है नौम, लैल नौम, और फिर नहार, फिर रियाह है ना, तो ये फिर है मा अंतहूरा, तो ये इससे मुराद जो है ये निशानियां हैं। वलाकद सर्रफनाहू, हमने इसको फेर फेर कर बयान किया है, बैनहुम इनके दरमियान, तो लोगों में यानी ये फेर फेर कर जो है वो अल्लाह ताला ने निशानियां जो है वो बयान की हैं, लियज़्ज़करू, ताकि वो उससे सबक लें। तो गोया के एक बारिश के मजमून को देखें तो कुरान में अल्लाह ने जो बार बार बयान किया है तो एक हकीकत समझाने की कोशिश की है कि अल्लाह ही ये काम कर सकता है। दूसरा गर्मी, खुश्की, मौसमी हवाएं, घटाओं, बरसात और कायनात के अंदर जो निज़ाम है ये भी अल्लाह ताला ही करने वाले हैं। फिर उसके बाद जो है तीसरी बात ये है कि बारिश को गर्दिश देते रहना, कभी थोड़ी बारिश, कभी ज्यादा बारिश, कभी तूफान, कभी सैलाब, ये मुख्तलिफ नताइज हैं। तो ये सब भी कौन करता है? अल्लाह ताला। लियज़्ज़करू, ताकि लोग इससे नसीहत हासिल करें, गौर व फिक्र करें और तौहीद के रबूबियत के कायल हो जाए और अल्लाह की इबादत करें। ये आयत नंबर 50 जो है अल्लाह ताला मुतवज्जो करते हैं इंसानों को कि ए इंसान, मैंने तुझे कितनी नेमतों से नवाजा, कुरान की नेमत, पैगंबर की नेमत, निशानियां मेरी आयात, फिर ये सारी कायनात में बिखरी हुई निशानियां, तू इन सारी नेमतों का इस्तेमाल करता है। इस्तेमाल करके करना क्या चाहिए था? लियज़्ज़करू, ताकि नसीहत हासिल करता, तेरा दिल नरम होता, तू मेरे आगे झुक जाता, तू मेरा बंदा और गुलाम बन जाता, तू नेमतें मेरी खाता है और तू फिर मुझे भूल जाता है। आप देखें वो कल जो माँ रो रही थी और मैं सोच रही थी इस बात पे कि वाकई माँ के माँ बाप के औलाद पर बड़े जो हैं वो हकूक बनते हैं और औलाद की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने माँ बाप की अताअत करे ना। और आप जो कि माँ, आप अपने ऊपर गौर करें, आप कितनी मसरूफ रहती हैं सुबह से लेकर रात तक। आप थकी हुई हैं सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह, लेकिन आप जब तक बच्चा बिस्तर पे चला ना जाए, वो होमवर्क क्यों ना कर रहा हो, आप ये जानना चाहती हैं कि कहीं वो कंप्यूटर पर बैठा तो नहीं रह जाएगा, वो इधर उधर तो नहीं हो जाएगा, है ना। तो आप जो है देखती हैं कि बच्चा जो है वो होमवर्क खत्म कर ले। फिर मतलब मैं कल ही देख रही थी कि रोज बेटी के बाप जो है यानी कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि बेटी ने कंबल लिया हुआ कि नहीं, फिर उसके ऊपर कंबल देके जाते हैं। अब देखे ना, माँ भी देती है बाप भी देता है, बच्चे के ऊपर से कंबल उतर तो नहीं गया, हीट मुनासिब है, अगर गर्मी का मौसम है तो एसी मुनासिब है। फिर ये कि हाँ इस बच्चे ने खाना नहीं खाया, अभी तक नहीं खाया ना, आप बोलते जाते हैं। आप स्कूल की भी आपको फिक्र होती है, उनके होमवर्क की भी फिक्र होती है, खेलने की भी फिक्र होती है, उनकी सेहत की भी फिक्र होती है। तो कितनी माँ बाप मशक्कत करते हैं छोटी उम्र से लेकर, जो इतना छोटा सा था बच्चा के हाथ में भी नहीं आता था, है ना, गोश्त ही गोश्त, हड्डी गोश्त ही गोश्त। लेकिन अब फिर एक वक्त आता है कि वो बच्चे माँ बाप को भूल जाएं। जैसे पिछले दिनों एक औरत रो रही थी कि बच्चा जो है वो पसंद की शादी करना चाहता है, गलत काम पे अब चला गया। यानी माँ से इतना ही ना पूछा जाए कि अब हम शादी करना चाहते हैं या जॉब कर ले तो पैसे अलग कर ले औलाद। अल्लाह ताला के रसूल ने तो ये फरमाया कि औलाद या औलाद भी तेरा कसब है, यानी औलाद भी वालदैन की कमाई है, बाप की कमाई है। तो कैसे औलाद को यह हक हासिल है कि वो अपने बच्चे पैसे बचा के रखे। और मैं गौर कर रही थी कि वाकई वालदैन हर पैसे को बचाते हैं, हर चीज को बचाते हैं औलाद की खातिर। औलाद के पास जब चीजें होती हैं तो वालदैन से उसको बचाना शुरू कर देते हैं, छुपाना शुरू कर देते हैं, हाइड करना शुरू कर देते हैं। माँ बाप की कोई प्राइवेसी नहीं होती। पिछले दिनों एक औरत कह रही थी, सूरत नूर में पढ़ा कि बच्चे मेरे कमरे में आ नहीं सकते, तो मैं ये समझती थी कि वो आ सकते हैं, मतलब यानी हमें खुद ही हर वक्त ख्याल रखना है अपना ना। लेकिन मुझे अच्छा पता चला कि अल्लाह ताला इतना मोहब्बत करने वाला है कि इस तरह से ये कि हम फायदे जवाबित अपने बच्चों को सिखाएं। तो इससे क्या बात पता चलती है कि जब बच्चा माँ की मानता नहीं, माँ कितनी दुखी हो जाती है कि इतना मैंने इसके साथ किया और आज ये बच्चा मुझे मानता नहीं है, मुझे पूछता नहीं है, मेरा हक अदा नहीं करता। फिर वो रोता है, वालदैन रोते हैं, कैसे रोते हैं कि वाकई हाथ उसके नीचे धुल जाए ना। तो और फिर भी वो चुप नहीं करते। लेकिन आप इसी मिसाल को आप अल्लाह ताला पर लेकर आए कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको अनगिनत नेमतों से नवाजा, इतनी नेमतें कि मैं और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। फाबा अक्सर उन्नासी इल्ला कुफूरा, मगर अक्सर लोग जो हैं, फाबा इनकार किया अक्सर लोगों ने इल्ला कुफूरा, क्यों इनकार किया, कुफर करने के लिए। इसलिए नहीं इनकार किया कि मिसाल समझ में नहीं आई, रसूल की बात समझ में नहीं आई, कुरान समझ में नहीं आया, कायनात की निशानियां समझ में नहीं आई। अल्लाह ताला कहते हैं फाबा अक्सर उन्नासी इल्ला कुफूरा, मगर अक्सर लोगों ने इनकार किया, किस लिए, नशुक्री करने के लिए, कुफर करने के लिए। कुफूर, कुफर जो है अल्लाह का इनकार करने को भी कहते हैं। और इसके अलावा ये कुफर करने के मानी क्या होते हैं कि अल्लाह की जो फराइज हैं, अल्लाह की जो जिम्मेदारियां, उनको ना पहचानना और फिर अल्लाह का हक जो है उसको अदा ना करना। तो लेकिन अफसोस के लोगों ने जो है वो कुफर किया, लोगों ने इनकार किया, अल्लाह की ना शुक्रिया की। और मुझे और आपको भी अपनी जिंदगी का जायजा लेना चाहिए कि ये ठंडा पानी, ये मीठी नींद, ये रात और दिन का हेर फेर और ये कायनात में बिखरी हुई निशानियां, ये अल्लाह की बड़ी अजीम निशानियां। और अगर मैंने और आपने अपनी आंखों को ना खोला और मैंने और आपने अपने रब को उसकी निशानियों से ना पहचाना, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान, ऐ फला औरत, ऐ फला मर्द, ऐ लड़की, ऐ लड़के, क्या तू कुफर करना चाहता है, क्या तू नशुक्री करना चाहता है। और कुफर करना और नशुक्री करना, फिर इसका अंजाम क्या है, फिर इसका नतीजा क्या है, कि फिर अजाब ही अजाब है ना। तो इसलिए मुसलमानों को सूरत फातिहा में पहली आयत जो सिखाई गई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की हम्द बयान करना, अल्लाह की किबरियाई बयान करना, उसकी अजमत के गुण गाना, अल्लाह की नेमतों का एतराफ करना। وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو جو ہے وہ گننا چاہو تو تم اللہ کی نعمتیں گن نہیں سکتے، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، یعنی اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں، تو پھر ایسے کیسے ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ناشکری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھتے ہیں، ہے نا؟ اور اسی طرح سورۃ تکاثر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس روز تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ تو ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میں اور آپ کہاں پہ کھڑے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا ولو شئنا، اور اگر ہم چاہتے لبسنا فی کل قریۃ نذیرا، ہم ہر بستی میں ایک ایک نذیر کھڑا کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہماری قدرت سے باہر نہیں تھا کہ جگہ جگہ نبی پیدا کرتے، مگر ہم نے ایسا نہیں کیا، ساری دنیا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ان کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، توحید کے دلائل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت لوگوں پر بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے لَبَعَثْنَا، تو ہم کھڑا کر دیتے، فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، ہر بستی میں نذیرہ ایک ڈرانے والا۔ لَبَعَثْنَا بَا عَيْن سَا جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو کسی خاص کام کے لیے روانہ کرنا، کسی کو کسی خاص کام کے لیے جو ہے وہ بھیجنا۔ تو بعث سے مراد یعنی کسی کا اٹھ کھڑا ہونا، مبعوث کرنا، اس کے یہ نہیں معنی کہ بس ایسے ہی وہ اٹھا اور کھڑا ہو گیا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی خاص کام کے لیے، کسی اہم کام کے لیے جو ہے اس کو کھڑا کرنا، اس کو بھیجنا، اس کو روانہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہم جو ہیں، جس طرح آپ دیکھیں کہ میں نے یہ رات اور دن کو بنایا، بارش نازل کی اور میں نے جو ہے وہ سائے پھیلا دیے، سورج، یہ ساری چیزیں میں نے بنائی نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں چاہتا گلی گلی، بستی بستی، ہر شہر میں، ہر جگہ ایک نذیر ڈرانے والا بھیجتا۔ نذیر کس کا نام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نذیر و بشیرہ، ڈرانے والے، غلطیوں گناہوں پر ڈرانے والے، جہنم سے ڈرانے والے، بشیرہ اچھے عملوں پر خوشخبری دینے والے، اور جنت کی بشارت دینے والے۔ تو گویا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی یہ، اللہ کو یہ قدرت ہے کہ کائنات میں اتنی بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے بنائی ہیں، سورج، چاند، ستارے، سارا کچھ، اسی طرح اللہ تعالیٰ پیغمبر بھی بہت سے بھیج سکتے تھے، ہر یعنی عرب میں، عجب میں، اس کے ہر ملک میں الگ الگ، ہے نا، جو سب مل کر اللہ کے خالق کی، اللہ جو خالق ہے اس کی عبادت کی دعوت دیتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، تمام انسانوں اور جنوں کے لیے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا ہے، آپ کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے، آپ بڑے ہی جو ہیں وہ معزز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے بہت پیار کیا کہ ایک نبی کو سارے انسانوں کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ جیسے اب آپ دیکھیں کہ سورج اللہ نے بنایا نا، سورج کیا ہے؟ سورج اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی جو ہے وہ نشانی ہے، ساری دنیا کو اکیلا ایک سورج روشنی دیتا ہے، بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیرا، روشنی بن کر، سورج بن کر لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں، نیکیوں کی طرف بلا رہے ہیں۔ پھر اب ایک طرف یہ کہ اہل مکہ اگر رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں، تو اہل مکہ کے انکار کرنے سے رسول اللہ کی رسالت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کی عظمت پر، آپ کی نبوت پر، آپ کی فضیلت اور اہمیت، فرق اس کو نہیں پڑے گا۔ اگر کوئی سورج پہ تھوکے تو تھوک اس کے منہ پر آ کر گرتا ہے، سورج کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر لوگ رسول اللہ کا انکار کریں گے تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی رسالت، ان کی فضیلت میں فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ لوگوں کی اپنی خرابی ہے، ان کا اپنا نقصان ہوگا کہ اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے وہ کام نہیں لے رہے۔ ایک تو یہ بات، کیا آپ کو تسلی دی جا رہی ہے؟ دوسری بات، فلا تطع الکافرین، اور آپ کافروں کا کہنا نہ مانیے۔ काफिरों की बात आपने नहीं माननी, उनकी अतात नहीं करनी। असल में काफिर क्या करते थे, आपने पिछली आयतों में पढ़ा कि दिन रात हर दिन नया नया मुतालबा करते थे। कभी कहते थे कि कोई सात फरिश्ता होना चाहिए था, कभी कहते थे कि मक्का के सरदारों में से कोई पैगंबर होता, कभी कहते थे कि ये कैसा रसूल है कि थोड़ा थोड़ा कुरान नाजिल होता है, इकट्ठा क्यों नहीं नाजिल हुआ, अगर इकट्ठा नाजिल होता तो हम मान जाते, कभी कहते थे कुछ बातें हमारी मान लो। तो आपको वो दिन रात जिद करते रहते थे, दिन रात आपके सामने जो थे वो मुतालबात रखते थे। जैसे आप देखें सूरत अहजाब में भी अल्लाह ताला ने ऑर्डर का सीगा यानी फेले नहीं देकर कहा या अय्युहन नबी, ए नबी इत्तकिल्लाह वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से डरते रहिए और काफिरों और मुनाफिकों की बातों में ना आ जाना, अल्लाह ताला बड़े इल्म वाला और बड़ी हिकमत वाला है। तो फला तुतिल काफिरीन, आप काफिरों की अतात ना कीजिए, यानी अल्लाह ताला की अतात कीजिए, अल्लाह ताला से डरिए और अल्लाह ही सारी बातों को जानता है। यानी मक्की दौर बड़ा सख्त दौर था और कभी कभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये ख्याल आता था कि क्यों ना इनका मुतालबा ही पूरा कर दिया जाए, कोई ऐसा मौजा ऐसी दलील नाजिल हो जाए कि जिससे ये लोग समझ जाए ना, ये ईमान ले आए। तो यहाँ पर जो बात बताई जा रही है वो क्या है, फला तो तेल काफिरीन, काफिरों की बात हरगिज ना मान, इनका कहना ना मानना। यहाँ पे असल में ला तो ते है ऑर्डर, तू अतात कर, फला तो ते तू ना अतात कर, ये ना फेल नहीं है और ऑर्डर के अंदाज में है। तू हरगिज कहना ना मान, किसका, कुफर करने वालों का, यानी उनसे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, उनकी बातों से घबराना नहीं है। वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, और इनसे और कुरान को लेकर इनसे जिहाद करो बड़ा जिहाद। वजाहिदहुम और जिहाद कीजिए इनके साथ बेही इसके जरिए, ही की जमीर कुरान के लिए है, जिहादन कबीरा बड़ा जिहाद।